समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, महानगरों का हाल जानेंगे, मौसम की बात करेंगे और इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे। उसके साथ ही याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को। आज के संग के साथ मैं हूं फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुस्तफा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार फरहत, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश वेंसडे एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड हस्बे दस्तूर हम हाजिर हैं ताजा तरीन खबरों को लेकर टू गिव यू दैट परफेक्ट स्टार्ट टू द डे, वेयर ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वील ब्रिंग यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स फ्रॉम योर वेरी ओन सिटी एंड ऑफकोर्स सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 25th ऑफ सितंबर। So let's start with the headlines first, Farhat.
जी सायरा, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में। इस समय विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 26 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के लिए 3,502 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 1,056 शहरी और 2,446 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आज 13,000 से अधिक मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। मतदान के लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि ज्यादातर लोग मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। निर्वाचन आयोग ने मतदान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वेबकास्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।
यूनियन मिनिस्टर्स एंड वेरियस एनडीए लीडर्स हैव डिस्क्राइब्ड प्राइम मिनिस्टर मोदीज थ्री डे विजिट टू द यूएस एज रिमार्केबल एंड ट्रेंड सेटिंग। होम मिनिस्टर अमित शाह सेड दैट दिस विजिट फर्दर फोर्टिफाइज द मोदी डॉक्ट्रिन ऑफ डिप्लोमेसी व्हिच ओवर द लास्ट 10 इयर्स हैज प्रिपेयर्ड भारत टू द रोल ऑफ अ ग्लोबल चेंज मेकर लीडिंग थ्रू एग्जाम्पल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मिस्टर शाह ऑल्सो सेड दैट द सक्सेसफुल क्वाड समिट, the Modi and US mega community event and the UN summit of the future reflect his unmatched popularity across the globe. Union Minister and BJP President Jagat Prakash Nadda said that Prime Minister Modi's US visit has been important and substantial in terms of scale and outcomes.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय ट्रेड शो का समापन 29 सितंबर को होगा। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के व्यापार और संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। इसमें वियतनाम को भागीदार देश के रूप में प्रमुख तौर पर दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण का उद्घाटन पिछले वर्ष भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था।
Union Minister Nirmala Sitharaman met Uzbekistan's Minister of Investments, Industry and Trade, Laziz Khudratov, ahead of the annual meeting of Board of Governors of Asian Infrastructure Investment Bank, or AIIB, in Samarkand. Both the ministers discussed issues of mutual interest related to bilateral trade, especially in areas of renewable energy, fertilizers and pharmaceutical sector. The Ministry of Finance has said both the ministers acknowledged the successful agreement towards the Bilateral Investment Treaty, or BIT, between India and Uzbekistan. They also agreed that it will bolster investors' confidence in each other's market, especially in the healthcare, hospitality and tourism sector. The ministry statement said that both ministers also discussed the digital payments revolution in India, including RuPay card and UPI mechanism.
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड 1 अक्टूबर से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन द्वारा गरवी गुजरात यात्रा शुरू कर रहा है। दिल्ली से शुरू होने वाली ये 10 दिवसीय यात्रा अहमदाबाद, मोडेरा, पाटन, वडननगर, पावगढ़, चंपारण, वडोदरा, केवड़िया, सोमनाथ, दीव और द्वारका सहित गुजरात के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरेगी। अत्याधुनिक डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय एसी कोच होंगे। ये यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ओमान के रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास अज नजहा 5/2024 पूरे जोरों पर है। 13 सितंबर से शुरू हुआ यह अभ्यास कल तक चलेगा। भारतीय सेना की 60 सदस्यों वाली टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मैकनलाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ अन्य हथियारों और इकाइयों के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। दोनों देशों की टुकड़ियों ने वास्तविक दुनिया के परिदृश्य और व्यावहारिक युद्ध कौशल के अनुरूप एक गतिशील क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया।
Srilankan President Anuradha Kumarasinghe dissolved the parliament late last night. A gazette notification was issued on the dissolution and calling elections on the 14th of November this year. Nominations will be received from 4th to 11th of October. Mr. Dissanayake was elected as the president of Sri Lanka in a close three-cornered fight. His National People's Power Alliance has only three members in the current legislature, two of whom are part of his cabinet, including Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya. Top Hezbollah commander Ibrahim Qubaisi has been killed in an Israeli airstrike in Lebanon's capital Beirut. The Israel Defense Forces, IDF, have confirmed that it killed the commander of Hezbollah's missiles and rockets force in an airstrike. IDF struck the Hezbollah-controlled area of Beirut for a second consecutive day after mounting a new wave of airstrikes in Lebanon. Qubaisi was hit alongside additional central commanders of Hezbollah's missiles and rockets force. In recent developments in the ongoing Gaza conflict, Israel is shifting its focus from south side to the northern frontier, where Hezbollah has been firing rockets into Israel in support of Hamas. The Israeli government is securing the border and setting the stage for a long conflict, inflicting heavy blow to Hezbollah.
मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आज तटीय और आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश और विदर्भ में मूसलाधार बारिश होगी। कल तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती परिस्थितियों के कारण पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी आंध्र और दक्षिण उड़ीसा तटों से सटे उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है।
And moving on to sports, in SAF Under-17 Championship Football, India defeated Maldives 3-0 in the final Group A match in Thimphu, Bhutan yesterday. After Samson Ohongshangbam gave India the lead in the 14th minute, H. Leung Kim scored in the 74th and 89th minutes and sealed the win for the team. Defending champions India, who have already qualified for the semi-finals, have finished as the Group A topper with 6 points. They will face runner-up team from Group B in the first semi-final on the 28th of September. Finals will be played on 30th of September. India is a five-time champion of SAF Under-17 and in the last edition they defeated Bangladesh 2-0 in the final.
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बाद अब रुख कर लेते हैं महानगरों का तो सारा सबसे पहले क्या है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में
Well, Farhad, let's start what's happening in Sheri Chennai. The artificial intelligence-based surveillance system installed on railway tracks in the Madukkarai area of Coimbatore Forest Division has significantly reduced wildlife deaths in the region. According to available data, 11 wild elephants, including calves and juveniles, were struck by speeding trains, resulting in 3 fatalities in 2021 alone. The Coimbatore Circle Conservator of Forest, R. Ramasubramanian, said that the Forest Department collaborated with railway authorities to develop the AI-based surveillance system, which was inaugurated in February this year. Since its installation, no wildlife deaths or injuries have been reported along the stretch. Three professors from Thiruvalluvar University in Vellore have been selected for the list of the world's best scientists released by Stanford University in the United States. Professor J. Madhavan from the Chemistry Department, Dr. M. Sayyad Ali from the Mathematics Department, and Dr. A. Rajashekhar from the Department of Biotechnology were all recognized. These professors have excelled in their respective fields of research and have published their work in top-ranking research journals. They expressed their happiness at being selected for this prestigious list. Moving on to Bengaluru, Karnataka Minister for Food, Public Distribution and Consumer Affairs, K.H. Muniyappa has requested the central government to sanction an NSIC Technical Services Centre and a Multi-Skill Development Centre for Devanahalli Taluk in Bengaluru Rural District. He met Union Minister Shobha Karandalaje in New Delhi yesterday and submitted a formal request for the skill centre. Muniyappa informed the Union Minister that Devanahalli is home to 45,000 MSMEs, providing employment to 4 lakh workers who require advanced training to remain industry ready. He assured the Union Minister that the state government will provide all necessary infrastructure if the central government allocates the multi-skill development centre at Devanahalli. He also emphasised that setting up a demand-based skill development centre in Devanahalli will help create skilled manpower and benefit industries establishing their facilities in the area. Moving on to Hyderabad. Telangana Director General of Police DGP Dr. Jitender has said that CPI Maoist has lost its base in Telangana with no scope left to revive its activities in the state. Responding to a question at the press conference in Hyderabad last evening, the DGP said that Maoists kept on trying to revive the activities in Telangana, but they lost support from the people. He added there have been instances where Maoists killed their own people who were trying to leave the group and then branded them as police informers. So Farhad, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी सारा, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को राजधानी के मीराबाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनके पास से उच्च गुणवत्ता का 116 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 60 लाख रुपए कीमत आकी गई है। वहीं शुक्रवार को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डीयूएसयू चुनाव से पहले सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। छात्रों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए सभी छात्र दलों द्वारा खूब मेहनत की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इस चुनाव में विभिन्न पदों पर कुल 21 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए दो पालियों में सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतों की गणना 28 सितंबर को होगी। वहीं आकाशवाणी दिल्ली स्थित रंग भवन परिसर में कल राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य पर आधारित माटी के रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थानी कलाकार दयाराम भांड और उनकी मंडली ने राजस्थान के विभिन्न लोकगीतों और नृत्यों पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार दयाराम भांड ने सबसे पहले राजस्थान के मशहूर लोकगीत पधारो म्हारे देश की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने बताया कि आकाशवाणी हमेशा लोकगीतों को प्रोत्साहित करता रहा है।
आकाशवाणी द्वारा हमेशा ही पारंपरिक और फोक म्यूजिक को बढ़ावा देने के प्रयास और उसको प्रिजर्व करने और आगे की नई पीढ़ी को उससे अवगत कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
और अब आगे रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2024 तक पूरे महाराष्ट्र में मोदी सेवा माह मनाया जा रहा है। इस पहल के तहत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विशेष चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से राज्यभर में निःशुल्क सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। स्पाइन फाउंडेशन ने इन शिविरों के दौरान पहचाने गए रोगियों के लिए निःशुल्क रीढ़ की सर्जरी करने का कार्यक्रम शुरू किया है। स्पाइन फाउंडेशन के ट्रस्टी और रीढ़ की बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर भोजराज ने कहा कि ये सर्जरी विभिन्न जिलों में रोगियों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। डॉक्टर भोजराज ने यह भी बताया कि स्पाइन फाउंडेशन शिविरों में शामिल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा रीढ़ की बीमारियों पर अनुसंधान भी करेगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की 27,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में कार्यरत सरपंच और उप सरपंच के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मंत्रिमंडल ने एक खेल परिसर की स्थापना के लिए क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को बांद्रा में 2,000 वर्ग मीटर का भूखंड पट्टे पर देने को भी मंजूरी दी है। ये भूखंड पहले सुनील गावस्कर को पट्टे पर दिया गया था, जो परिसर विकसित करने में विफल रहे। वहीं 14,886 करोड़ रूपये की लागत से शिरूर से छत्रपति संभाजीनगर तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य द्वारा संचालित महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को पहले प्रस्तावित 30 वर्षों के बजाय 60 वर्षों की अवधि के लिए निर्माण संचालन और हस्तांतरण बीओटी के आधार पर वाणिज्यिक विकास के लिए 39 भूमि पार्सल देने की भी अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगतगुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने 3 कुनबी उपजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सूची में शामिल करने को भी मंजूरी दी। वहीं पश्चिम रेलवे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। रेलवे अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक और समुदाय के सदस्य इस पहल में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। अभियान के प्रत्येक दिन एक विशिष्ट थीम है। 21 सितंबर को वृक्षारोपण, 22 सितंबर को काम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकिल तथा 23 सितंबर को पुनर्नवीकरण उत्पादों की बिक्री पर केंद्रित थे। इसके अतिरिक्त पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों, कारखानों और डिपो में विभिन्न वेस्ट टू आर्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे कर्मचारियों, छात्रों और स्थानीय कलाकारों सहित लगभग 400 प्रतिभागियों ने अपशिष्ट पदार्थों को नई कलाकृतियों में बदलकर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। और अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। पूर्वी रेलवे का सियालदह डिवीजन सियालदह और कोलकाता स्टेशनों से 9 विशेष ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें अक्टूबर और नवंबर से दुर्गा पूजा और दिवाली त्योहारों पर चलाई जाएंगी। सियालदह न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, सियालदह न्यू अलीपुरद्वार, सियालदह पटना, कोलकाता कटिहार, कोलकाता जमालपुर, कोलकाता गया, सियालदह सहरसा, सियालदह गोरखपुर, कोलकाता दीघा रूट पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। महानगरों की खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई की बात करें तो वहां पर भी बारिश का दौर जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में भी आज बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो सारा ये तो थी बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। कैसा रहेगा आपके शहर में मौसम का हाल?
बस मेरा शहर तो दिल्ली ही है, लेकिन हम आपको बताते हैं चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद में कैसा रहेगा। मोर और लेस सिमिलर वेदर कंडीशंस फॉर दैट, बिकॉज चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन ऑफ थंडर स्टॉर्म एंड टेम्परेचर इन चेन्नई विल हॉवर बिटवीन 25 एंड 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन एंड टेम्परेचर विल हॉवर बिटवीन 20 एंड 29 डिग्री सेल्सियस। Whereas Hyderabad will also have some light showers today and temperature will hover between 23 and 31 degrees Celsius. For us today, we are observing Antyodaya Divas, a day dedicated to honoring the legacy of Pandit Deen Dayal Upadhyay, who was a visionary leader and contributed immensely to uplift the marginalized. His philosophy of Antyodaya, meaning the rise of the last person, emphasizes inclusive development, ensuring that no one is left behind. Key government initiatives in Pandit Deen Dayal's name include the Deen Dayal Antyodaya Yojana for skill development, the Gramin Kaushali Yojana to provide jobs for rural youth, and the Gram Jyoti Yojana aimed at providing electricity to rural homes. On this Antyodaya Divas, we celebrate the vision of Pandit Deen Dayal Upadhyay of building a more inclusive and empowered India. For today also, there's an important day called the World Pharmacist Day. It honors the dedication and contributions of pharmacists across the globe. This year's theme is Pharmacists Meeting Global Health Needs, highlights the crucial role of these people in enhancing health outcomes worldwide. Pharmacists are at the heart of our healthcare system, making sure we have access to medicines we need, offering expert care, and supporting public health every day. It's so important to recognize their contribution in keeping our communities healthy and thriving. और फरहत के ख्याल से इसकी सबसे ज्यादा हम लोग को जो है इम्पोर्टेंस पता चली ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक।
जी बिल्कुल, और कहा भी गया है जान है तो जहान है, तो ऐसे में अगर 24 आवर्स अवेलेबल जो केमिस्ट शॉप्स जो रहती हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी होती हैं चीजों को उपलब्ध कराना, कि अगर 12 बजे 1 बजे कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हमें तबीयत जो है खराब हो जाए, तो ऐसे में जो है उनसे मेडिसिन जो है वो ली जा सकती है।
बिल्कुल, एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड द फार्मासिस्ट हैड एक्चुअली रिजॉर्टेड टू होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन आल्सो, so I think that was quite commendable. And pharmacists lead in disease prevention, research and policy advocacy and have been instrumental in tackling global health crises like COVID-19. From administering vaccines to promoting greener healthcare practices, pharmacists are a key in strengthening health systems and addressing future challenges. On this World Pharmacist Day, we recognize their vital role in building a healthier and more resilient world. So Farhad, ये तो मैंने आज के दिन की महत्व बता दी, but what happened on this day in history? Can you tell us?
जी सायरा, सबसे पहले हम बात करें अगर 1340 की, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने निरस्त्रीकरण संधि पर आज ही के दिन हस्ताक्षर किए थे, और 1654 में इंग्लैंड और डेनमार्क ने व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए।
If we take back to our listeners back to the year 1513, Spanish explorer Vasco Nunez de Balboa crossed the Panama Isthmus, becoming the first European to see the Pacific Ocean. Also on this day in 1789, the United States Congress formally introduced the Bill of Rights, a pivotal moment in the nation's history.
और सन 2020 की अगर बात की जाए तो आज ही के दिन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अस्तित्व में आया. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की उसने जगह ली. इसे भारत के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और चिकित्सा पेशेवरों के नियमन के लिए नीतियां बनाने का भी अधिकार है.
In 1957, at the 18th Venice Film Festival, a very important thing happened. The film Aparajito, which was directed by Satyajit Ray, was the first film to win the Golden Lion and the Critics Award at the film festival. Also on this day, 1981, Sandra Day O'Connor was sworn in as the first female U.S. Supreme Court Justice. And in 1997, India clinched the Red and White Lattice Masters International Snooker title इन कराची.
और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन की. देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा. एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रोफेसर सतीश धवन एक बेहतरीन इंसान और कुशल शिक्षक भी रहे. उन्हें भारतीय प्रतिभाओं पर बहुत भरोसा था. सतीश धवन को विक्रम साराभाई के बाद देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई. वे इसरो के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए.
Yes, in fact, he is regarded as the father of experimental fluid dynamics research in India. And Satish Dhawan was one of the most eminent researchers in the field of turbulence and boundary layers, leading the successful and indigenous development of the Indian space program. The second launch pad of ISRO, Satish Dhawan Space Center, is named after him. He is greatly regarded as the man behind APJ Abdul Kalam.
जी बिल्कुल सर. और सतीश धवन के प्रयासों से ही संचार उपग्रह इनसेट, दूर संवेदी उपग्रह IRS और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का सपना साकार हो पाया था.
Today we are also remembering Arun Balakrishna Kolhatkar, an Indian poet who wrote both in Marathi and English. His poems are known for expressing their humor in everyday life. Kolhatkar is the only Indian poet other than Kabir to be featured on the World Classics titles of New York Review of Books.
और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुकमाबाई राउत ने. वे एक ऐतिहासिक कानूनी मामले के केंद्र में भी रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 नामक कानून बना. रुकमाबाई को डॉक्टर बनने की इच्छा थी और वे लोगों की सेवा करना चाहती थी. उनके इस फैसले को घर वालों और लोगों का समर्थन मिला. इसके लिए लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में भेजने और पढ़ाई के लिए एक फंड तैयार किया गया. वहां से रुकमाबाई ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1895 में वापस भारत लौटी. रुकमाबाई ने सूरत के महिला अस्पताल को चुना. उन्होंने जीवन भर डॉक्टरी की. डॉक्टर रुकमाबाई एक सामाजिक सुधारक भी रहीं, जिन्होंने कई बुराइयों के लिए आवाज उठाई और महिला और बाल अधिकारियों के लिए खुलकर बोला.
Today we are also remembering Frank Anthony on his birth anniversary, a very prominent leader of the Anglo-Indian and Christian community in India. And until his death, he was the Anglo-Indian nominated representative in the Parliament of India, except in the 6th and 9th Lok Sabha. He served as the president of the All India Anglo-Indian Association. Frank Anthony was part of the Constituent Assembly that wrote the Constitution of India. He was deeply opposed to the partition. Anthony was known for championing Christian education. He was also the founder of a Council for the Indian School Certificate Examination, or CISC, which operates the ICSE Board of Education in India. In 1942-46, he was a member of the Central Legislative Assembly and later a member of the Constituent Assembly of India during 1946-50, and represented the Anglo-Indian community in assembly. And we all know for sure that Frank Anthony schools are, throughout their pan-India, they are quite well known for imparting quality education.
और अगर बात की जाए हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता की, तो आज प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक फिरोज खान की पुण्यतिथि है. फिरोज खान अपनी खास शैली, अलग अंदाज और किरदारों के लिए जाने जाते रहे. बॉलीवुड में फिरोज खान ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में बनी फिल्म दीदी से की. शुरुआती कुछ फिल्मों में अभिनेता का किरदार निभाने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए खलनायकों की भी भूमिका अदा की. वर्ष 1962 में फिरोज ने अंग्रेजी भाषा की एक फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया में काम किया. 1965 में उनकी पहली हिट फिल्म ऊंचे लोग आए, जिसने उन्हें सफलता का स्वाद चखाया. अभिनय के लिहाज से फिरोज खान के लिए 70 का दशक काफी खास रहा। फिल्म आदमी और इंसान में अभिनय के लिए फिरोज को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का पुरस्कार मिला। वहीं 70 के दशक में उन्होंने आदमी और इंसान, मेला, धर्मात्मा जैसी बेहतरीन फिल्में दी। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म धर्मात्मा से ये खूबसूरत सा गीत।
तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ, तेरी ओर चलाता हूँ।
Very few people know that Firoz Khan's real name is Zulfikar Ali Shah Khan, and he appeared in over 60 films throughout his career, and he became one of the Bollywood's popular style icons. In fact, Farhad, हमें तो नहीं याद आ रहा कोई भी ऐसी फिल्म जिसमें Firoz Khan played a role of a poor hero, you know, because his looks and his style, he was fond in real life also, he was fond of using very lavish and luxury cars. He was fond of horses. In fact, उनकी फिल्म में आपने देखा होगा जो उन्होंने डायरेक्ट भी की लेटर, उसमें घोड़े बहुत दिखाए जाते थे। So it was they were from his own farm houses.
जी बिल्कुल सर, उन्हें बॉलीवुड का स्टाइल आइकन भी माना जाता था और आज उनकी स्टाइल का कोई मुझे नहीं लगता मुकाबला कर पाया है।
Yes, absolutely. And in fact, he gave many successful Hindi films such as आरजू, सफर, मेला, अपराध, खोटे सिक्के, काला सोना, धर्मात्मा, नागिन, कुर्बानी, जानबाज एंड हिज लास्ट फिल्म ऑफ कोर्स इन हिज यू कैन से लास्ट ईयर वाज वेलकम। और वैसे तो सबको जानबाज का वो बहुत ही खूबसूरत गाना याद है जिसमें श्रीदेवी इज ऑन द माइक एंड ही इज जस्ट लुकिंग, बट वी ऑल्सो हैव अ वेरी मेमोरेबल सॉन्ग ऑफ फिरोज खान, लेट्स लिसन टू इट।
सूरत तुम्हारी चाहत तुम्हारी कहना सकोगी,
लगती नहीं थी कि नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो
सूरत तुम्हारी।
और आज जानी मानी अभिनेत्री दिव्या दत्ता का जन्मदिन है। वो भले ही बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस नहीं है, फिर भी दर्शक उनके अभिनय के कायल हैं। दिव्या दत्ता फिल्म जगत में अपने सरीखे अभिनय के लिए भी जानी जाती है और उन्हें कविताएं लिखने का भी बेहद शौक है सायरा। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की ये खूबसूरत सी कविता।
तुम मेरा जरा सा काम कर दो सजन, जो बात तुमने मुझ में हुई वो लोगों को बतलाते जाओ, यूं छुप छुप कर अब तुम ना आओ, जो वादे मेरे साथ किए उनकी वफा निभाते जाओ, जाते जाते ऐसा जन अपना मुझे बनाते जाओ, यूं छुप छुप कर अब तुम ना आओ, लोग जो पूछे कौन हो तुम्हारी बस सच उन्हें बतलाते जाओ, जो बात तुम में मुझ में हुई वो लोगों को बतलाते जाओ, मेरी तड़प का कुछ तो असर होना चाहिए, लहू जो टपका आंखों से जख्म तो होना चाहिए, खुद में हूँ मशगूल सनम इतनी बात तो निभाते जाओ, यूं छुप छुप कर अब तुम ना।
साल 2004 में दिव्या को पहचान यशराज फिल्म की फिल्म वीर ज़ारा से मिली। फिल्म में दत्ता के अलावा शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी थे। फिल्म में इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी दिव्या अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों और आलोचकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रही।
Today is also Shama Zaidi's birthday. A screenplay writer, costume designer, art director, theatre person, art critic and documentary filmmaker. Shama Zaidi is married to director M.S. Sathyu. She was honored with the Lifetime Achievement Award at International Cultural Artifact Film Festival. She has written scripts and dialogues for documentaries and feature films with eminent directors like Satyajit Ray, Shyam Benegal, M.S. Sathyu and Muzaffar Ali. She has also worked as the costume designer and art director of many films. Whether films is like Charandas Chor, Garbhava, Manthan, Shatranj Ke Khiladi, Kaneshwara Rama, Bhumika and Umrao Jaan, Shama Zaidi has been a part of all these projects. And since we all know that she wrote the script, co-wrote the script of Umrao Jaan with Javed Siddiqui, let's listen to a beautiful song from this film.
Yeah.
और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रहे हैं कि कहना होगा आपको अलविदा और अनुमति दीजिए सारा और फरहत को, कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात आ हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड।
नमस्कार।